तारा परी और सोनल परी अदृश्य होकर अमन की हवेली में पहुंच चुकी थीं। अमन काली शक्तियों से परेशान होकर तिलिस्मी पत्थर से हवेली के चारों ओर एक जादुई घेरा बना चुका था, जिससे कोई भी काली शक्ति हवेली के अंदर ना आ सके। लेकिन तारा परी ने अपनी कुछ शक्ति का प्रयोग करके उस हवेली के अंदर प्रवेश कर लिया था। सोनल परी ने तब उसे कहा था, जरूर तुम्हारे पास तिलिस्मी पत्थर से भी ज्यादा शक्तिशाली कुछ है। तारा परी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और वे दोनों बातें करती हुई हवेली के कॉरिडोर में आ गई थीं। हवेली के उस कॉरिडोर में अलग अलग तरह की बड़ी ही खूबसूरत मूर्तियां बनी हुई थीं। दोनों परियां बड़े ही चाव से चारों ओर देख रही थीं, घूम रही थीं, और तारा परी तो एक एक मूर्ति को छू कर देख रही थी, मानो वो अभी जिंदा हो जाएगी। जादुई बावर्ची द्वारा बनाए गए खाने की खुशबू से पूरी हवेली महक रही थी। खाने की खुशबू से सोनल परी बेचैन हो उठी थी और उसने भी खाना खाने की इच्छा जताई थी, लेकिन तारा परी ने उसे मना कर दिया था। वे दोनों बातें ही कर रही थीं कि तभी अमन उन्हें उसी ओर आता हुआ दिखाई दिया, जिस ओर अदृश्य होकर तारा परी और सोनल परी खड़ी हुई थीं। अमन वहां से आगे निकल गया था, लेकिन अचानक वो पीछे पलटा और वापस आने लगा। तारा परी और सोनल परी सांसें थाम कर उसे देख रही थीं। दोनों मन ही मन बातें करने लगीं। तब सोनल परी ने कहा, ये जिन वापस क्यों आ रहा है, कहीं इसने हमें देख तो नहीं लिया। तारा परी मन ही मन सोच रही थी, अपनी बकवास बंद कर और चुपचाप सांसें थाम कर खड़ी रहे। दोनों बिल्कुल चुप खड़ी हो गईं और अमन बिल्कुल तारा परी के करीब जाकर खड़ा हो गया। फिर अचानक एक मूर्ति की ओर हाथ बढ़ाते हुए उसे छूकर कहने लगा, कहाँ चली गई हो तुम तारा, बहुत याद आ रही है तुम्हारी। बस एक बार ये जिन्नों की दावत अच्छे से हो जाए, फिर तुम भी मुझे वापस मिल जाओगी। अमन बड़े ही प्यार से उस मूर्ति को छू रहा था, और कमाल की बात तो ये थी कि तारा ने भी उसी मूर्ति को छुआ था। अमन कह रहा था, न जाने क्यों ऐसा लग रहा है मानो तुम मेरे आसपास हो। बस एक बार लौट आओ तारा, मैं फिर हमेशा तुम्हें अपनी आंखों के सामने रखूंगा, कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तारा परी और सोनल परी सांसें थामे अमन की सारी बातें सुन रही थीं। तभी हवेली के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनाई दी। अमन जल्दी से बाहर की ओर गया। अमन के जाते ही सोनल परी ने कहा, हाय कितना प्यारा है ये, काश इतनी मोहब्बत मुझसे भी कोई करता। तारा परी उसकी बात से तपाक से बोली, श, बकवास मत कर, ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता है। अगर किसी मर्द को मोहब्बत होती है तो सिर्फ और सिर्फ औरत के जिस्म से, और वो मोहब्बत नहीं बल्कि जिस्म की हवस होती है और कुछ नहीं। सोनल परी उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गई और बोली, ये क्या कह रही हो तुम, अमन सिंह राठौर मोहब्बत करता है तुमसे, और अगर वो ही नेक दिल इंसान हुआ तो क्या तुम तब भी उससे मोहब्बत नहीं करोगी। तारा परी ने कहा, मुझे किसी से कोई मोहब्बत नहीं है, मुझे अगर किसी चीज़ से मतलब है तो वो है मेरा घर, परी लोग, वहाँ के लोग, और मेरा जिस्म, मेरी रूह, जिसे उस लाक्षस ने कब का छलनी कर दिया है। मुझे अब मोहब्बत से कोई लेना देना नहीं है, मुझे अब सिर्फ और सिर्फ बदला चाहिए, और उसी बदले के लिए आज मैं यहाँ हूँ। मुझे बस वो नेक दिल इंसान मिल जाए, मैं उससे शादी कर लूँ और एक बच्चा पैदा कर लूँ, उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने परीलोक लौट जाऊँगी। फिर मेरा किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा, ना ही इस पृथ्वी से और ना ही उस नेक दिल इंसान से। तारा परी ने दो टूक बात करके सोनल परी का मुंह बंद करा दिया था, और अभी तारा परी और कुछ कहना चाहती थी कि तभी अमन करिश्मा जी के साथ अंदर आ गया था और वे दोनों एकदम खामोश हो गई थीं। अमन ने आते ही करिश्मा जी को सारी बात बता दी थी कि किस तरह से एक काला साया तारा परी का रूप लेकर उसके सामने आया था और किस तरह से खाना बनाते हुए जादुई बावर्ची के हाथ जल गए थे। करिश्मा जी के साथ साथ वे दोनों परियां भी सांसें थाम कर अमन की बात सुन रही थीं। तभी करिश्मा जी ने अपने बेटे के हाथ पर अपना हाथ रख दिया था और वे कहने लगी, तारा को लेकर परेशान मत हो, मैंने कहा ना, तारा बहुत जल्द मिल जाएगी। अभी जिन्नों की दावत शुरू होने में एक पहर बाकी है, ठीक रात के 12 बजे के बाद जिन्नों की दावत शुरू होगी, और दावत के बाद हम जिनसे आग्रह करेंगे कि वो हमें तारा का पता बताए या उसे लेकर आए, और तुम मेरा यकीन मानो, वो हर हाल में तारा को ले आएंगे, और साथ ही हमें ये भी पता चल जाएगा कि दोस्त के भेस में हमारे आसपास हमारा वो कौन दुश्मन है जो तिलिस्मी पत्थर लेने के लिए ये नए नए हथकंडे अपना रहा है। बस बेटा एक पहर और, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अमन अपनी माँ के गले लग गया और वे दोनों उन्हें देखती रहीं। तारा परी न जाने किस सोच में गुम थी। तब सोनल परी ने मन ही मन उसे वहां से कहीं और चलने के लिए कहा था, और वे दोनों हवेली के हॉल से निकलकर सीधा किसी कमरे में चली गई थीं। सोनल परी ने कहा, ये इन माँ बेटे के बीच क्या बातें हो रही थीं, और कौन तुझे इनके सामने ले आएगा, कहीं ये सच ना हो जाए। तारा, हमें जल्द से जल्द अमन की सच्चाई जाननी होगी, क्योंकि मैं तुझे एक बात बता दूं, जिन्नों में भी कुछ कम शक्तियां नहीं होती हैं, वे लोग भी काफी शक्तिशाली होते हैं, कहीं ऐसा ना हो वे लोग तुझे ढूंढ निकालें और तेरा सच सबको पता चल जाए। तारापरी ने कहा, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। फिलहाल चलो, हमें इस हवेली के तहखाने में जाना होगा। वहां एक सफेद रंग का दरवाजा ढूंढना होगा। हमें हमारे सारे सवालों के जवाब वहां उसी सफेद रंग के दरवाजे वाले कमरे में मिलेंगे। सोनल परी ने पूछा, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि यहाँ कोई सफेद दरवाजा है? तारापरी ने जवाब दिया, पहले मैं अपने कुछ सवालों के जवाब ढूंढ लूं, उसके बाद मैं विस्तार से तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दूंगी। अब चलो मेरे साथ, जिन्नों की दावत शुरू होने से पहले पहले हमें उस कमरे में से बाहर भी निकलना होगा। सोनल परी ने कहा, लेकिन क्यों? हमें तो टाइम मिल जाएगा। जिन यहाँ अपनी दावत खाते रहेंगे और हम आराम से तहखाने में जो ढूंढना चाहते हैं वो ढूंढ लेंगे। तारापरी ने कहा, तुझमें थोड़ा बहुत दिमाग है या तुम अपना दिमाग परीलोक छोड़कर आई हो? जिन्नों की दावत यहाँ कपड़ा बिछाकर या टेबल कुर्सी बिछाकर नहीं होगी, उनकी दावत उस सफेद रंग के कमरे में ही होगी। ये सुनकर सोनल परी चौंक गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वो अपना मुंह बंद करके तारापरी के पीछे पीछे चल पड़ी थी। तारापरी बड़ी ही होशियारी से नीचे तहखाने की ओर जाने लगी थी। जबकि वे दोनों अदृश्य थीं, लेकिन उनकी आवाज, उनका वजूद अगर किसी से छू जाए तो वो बहुत आराम से पहचान सकता था कि जरूर यहाँ कोई है जो दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए उन दोनों को सावधानी बरतनी ही थी। वहीं दूसरी ओर करिश्मा जी ने अमन से कहा था, बेटा अब ज्यादा वक्त नहीं है दावत शुरू होने में, इसलिए हमें नीचे तहखाने में जाना होगा और सफेद कमरे का दरवाजा खोलना होगा। ये रही उस कमरे की चाबी। ऐसा कहकर करिश्मा जी ने एक बड़ी ही खूबसूरत सी चाबी, जिस पर मोर की आकृति थी, वो अमन को थमा दी थी। अमन ने कहा, ठीक है माँ, आप चलिए, मैं एक बार सातों बावर्चियों से मिलकर आता हूँ। करिश्मा जी ने हाँ में सर हिला दिया और वो हवेली के मध्य में बने हुए एक कमरे में चली गई। उस कमरे में उनकी पुरानी यादें थीं। अपने पुराने कमरे में जाकर उन्हें अपने पति के साथ बिताया हुआ एक एक पल याद आ रहा था। वे सोच रही थीं, वो भी क्या दिन थे जब वे लोग हंसी खुशी उस हवेली में अपने बच्चों के साथ रहा करते थे। करिश्मा जी सोच रही थीं, काश मेरे हंसते खेलते परिवार पर उस पिशाच की बुरी नजर ना पड़ी होती तो शायद आज भी हम हंसी खुशी इसी हवेली में रह रहे होते। काश। सारी पुरानी बातें याद करके करिश्मा जी की आंखें भर आई थीं।
काफी वक्त हो चुका था और 12 बजने में अब केवल कुछ ही समय बाकी था, सो करिश्मा जी अपने अतीत की डायरी बंद करके तैयार होने लगी थीं। वहीं तारापरी और सोनल परी तहखाने में पहुंच चुकी थीं, लेकिन उन्होंने हर जगह ढूंढ लिया था, लेकिन वहां उन्हें कोई कमरा नहीं दिखा था। सोनल परी ने कहा, ये क्या, ये तो खाली एक बड़ा सा हॉल बना है जिसे इन जिन्नों ने तहखाने का नाम दिया था। यहाँ तो दूर दूर तक कोई कमरा नहीं दिख रहा है मुझे। तारापरी ने कहा, सब्र करो, वो कमरा हमें जरूर यही मिलेगा। एक मिनट, जरा ठहरो। तभी तारापरी ने अपना जादुई लॉकेट लिया, उसे पूरे हॉल में लेकर घूमने लगी थी। सोनल परी उसके पीछे पीछे ही चल रही थी और फिर अचानक एक जगह वो लॉकेट जगमगाने लगा था। तारापरी वहीं रुक गई और तारापरी ने उस लॉकेट को उसी जगह दीवार से छुआ दिया था और देखते ही देखते वो तहखाना हिलने लगा था और बड़ा ही खूबसूरत चमचमाता हुआ सफ़ेद रंग का दरवाज़ा वहां दिखाई देने लगा था। सोनल परी उस दरवाजे को देखकर चहक उठी थी, क्योंकि वो वाकई बेहद खूबसूरत था। तारापरी भी एक पल के लिए तो उस वक्त उस दरवाजे की खूबसूरती देखकर चौंक उठी थी और कुछ पलों तक उसे देखती रही थी। और दूसरी तरफ सफ़ेद दरवाजे के सामने आते ही जो कंपन हुआ था, उसकी दहलक ऊपर तक भी गई थी, जैसे अमन के साथ साथ करिश्मा जी और वहां काम करने वाले सातों जादुई बावर्ची ने भी महसूस किया था। और वो कंपन सुनकर करिश्मा जी भागते हुए हॉल में आई थी, जहां अमन पहले से मौजूद था। करिश्मा जी दावत के लिए तैयार हो चुकी थीं। उन्होंने बिल्कुल सफ़ेद रंग के उजले हुए कपड़े पहने थे। करिश्मा जी चिंतापूर्ण स्वर में बोली, अमन बेटा, क्या तुमने भी वो भूकंप सा महसूस किया जो हमने किया है? अमन ने कहा, जी हाँ मॉम, यहाँ ज़रूर कुछ गड़बड़ है। करिश्मा जी ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो भला, यहाँ कैसी गड़बड़ हो सकती है? तुमने तो तिलिस्मी पत्थर से जादुई घेरा बनाया था ना, तो इसका मतलब साफ़ है, कोई काली शक्ति वो घेरा तोड़कर अंदर नहीं आ सकती थी। लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ तो ज़रूर है, क्योंकि ऐसे ही पृथ्वी में कंपन नहीं हो सकती थी। अमन ने कहा, आप रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। करिश्मा जी ने हाँ में सर हिला दिया और अमन हवेली से बाहर गया तो उसने देखा, पूरा आसमान काले काले बादलों से घिरा पड़ा था। जिस वक्त आसमान में खूबसूरत चांद सितारे होने चाहिए थे, उस वक्त वहाँ बड़े बड़े काले बादल छाए हुए थे।